पेज नंबर 55। किसी कर्म के संबंध में जहाँ आनंद पूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसे उत्साह कहते। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान तीन रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला कर्म भावना से उत्पन्न, दूसरा फल भावना से उत्पन्न और तीसरा आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। इनमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए, जिसमें साहस का योग प्रायः बहुत अधिक रहा कर। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है उसी समय उसमें उतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। के सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अंतर नहीं होता या बहुत सिमटा हुआ होता है। इसी से कर्म की ओर यह उसी झोंक से लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका कर। इसी कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्त करता। पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है वहाँ कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। उद्योग के प्रभाव के बीच जब जब फल की भावना मंद पड़ती है उसकी आशा कुछ धुंधली पड़ जाती, तब तब आनंद की उमंग गिर जाती है और उसी के साथ उद्योग में भी शिथिलता आ जाती। पर कर्म भावना प्रधान उत्साह बराबर एक रस रहता है। फलाशक्त उत्साही असफल होने पर भी खिन्न और दुखी नहीं होता, पर कर्माशक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह। फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है जिसकी प्रेरणा से तत्परता। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े उसकी भावना के साथ ही उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगाव न मालूम हो तो हमारे हाथ पांव कभी ना उठें और उस फल के साथ हमारा संयोग ही ना हो। इससे कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लग। यदि हमें यह निश्चित हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाएगी। हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों की प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई दे। यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में भी देखी जाती। वे कर्म भी प्रिय होते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा ना लगेगा तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। फल की इच्छा मात्र हृदय में रख कर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभावमय और आनंद शून्य होने के कारण निर्जीव सा होगा। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतनी उतावली और आकुल होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर क्रम का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच में ही चूक जाता। मान लीजिए एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियां दिखाई दी और यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें उतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त प्रफुल्ल और अंग सचेष्ट हो गए तो उसे एक एक क्षण सुख से बीतता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ स्वर्ण राशि तक पहुंचेगा। एक प्रकार से उसके प्रयत्न काल को भी फल प्राप्ति काल के अंतर्गत ही समझना चाहिए। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा और उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जाएगी, तो अभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंच जाए। उसे एक एक सीढ़ी उतरना उतना बुरा मालूम होगा और आश्चर्य नहीं कि वह या तो हार कर बैठ जाए या लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़े।